राधावा कुंज विहारी जय गोपी जनावल्लभा गिरिवर धारी जय गोपी जनावल्लभा गिरिवर धारी राधा माधव कुंज विहारी जय राधा माधव कुंज विहारी जनावल्लभा गिरिवर धारी यशोदानन्दन व्रजजनरञ्जन यशोदानन्दन व्रजजनरञ्जन यमुनातीरावनचारी यमुनातीरा वनचारे जय राधा माधव कुंज विहारी जय माधव कुंज विहारी जय हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Radha Giridhari Radha Giridhari Radhe Jai Jagannath Jai Jagannath Jai Baladeva Jai Subhadra Jaya Gauranitai, 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 Jaya Gauranitai. Nitai Gaurariba, Riba, Haribo. Hari bol Nittai Gaura Ya Jaya Prabhupada 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 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये नष्टप्रायेष भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैश्चिके श्रीमद्भागवतम स्कंद 9 अध्याय 19 श्लोक संख्या 12 तथा अहम् कृपणः सुब्रुः भवतायाः प्रेमयन्त्रितः आत्मानं न अभिजानामि मोहितः तव मायया तथाहं कृपणसुभ्रो तथाहं कृपणसुभ्रो भवताया प्रेमयन्त्रितः ಅವತಾಯ ಪ್ರೇಮಯಂತ್ರಿತಃ ಆತ್ಮಾನಂ ಅಭಿಜಾನಾಮಿ ಆತ್ಮಾನಂ ನಾಭಿಜಾನಾಮಿ ಮೋಹಿತಸ್ತವ ಮಾಯಯಾ ಮೋಹಿತಸ್ತವ ಮಾಯಯಾ ಸಗಾಹಂ ಕೃಪಣ ಸುಭ್ರೂ ಭವತಾಯ ಪ್ರೇಮಯಂತ್ರಿತಃ ಆತ್ಮಾನಂ ನಾಭಿಜಾನಾಮಿ ಮೋಹಿತಸ್ತವ ಮಾಯಯಾ ಸದಾಹಂ ಕೃಪಣ ಸುಭ್ರೂ ಯಂತ್ರಿತಃ ಆತ್ಮಾನಂ ನಾಭಿಜಾನಾಮಿ
ಮೋಹಿತಸ್ತವ
ಮಾಯಯಾ ಸದಾಹಂ ಕೃಪಣ ಸುಭ್ರೂ ಸ್ತವ ಮಾಯಯಾ ಸಾಹಂ ಕೃಪಣ ಸುಭ್ರೂ ವರ ಪ್ರೇಮಯಂತ್ರಿತಃ ಆತ್ಮಾನಂ ನಾಭಿಜಾನಾಮಿ ಮೋಹಿತಸ್ತವ ಮಾಯಯಾ ಸಾಹಂ ಕೃಪಣ ಸುಭ್ರೋ ಯಂತ್ರಿತ ಆತ್ಮಾನಂ ನಾಭಿಜಾನಾಮಿ ಮೋಹಿತಸ್ತವ ಮಾಯಯಾ ಸಾಹಂ ಕೃಪಣ ಸುಭ್ರೋ
ಅವತ್ಯ
ಆತ್ಮಾನಂ ನಾಭಿಜಾನಾಮಿ ಮೋಹಿತಸ್ತವ ಮಾಯಯಾ ಸಾಹಂ ಕೃಪಣ ಸುಭ್ರೂ ಆತ್ಮಾನಂ ನಾಭಿಜಾನಾಮಿ ಮೋಹಿತಸ್ತವ ಮಾಯಯಾ ಸದಾಹಂ ಕೃಪಣ ಸುಭ್ರೂ ಆತ್ಮಾನಂ ನಾಭಿಜಾನಾಮಿ ಮಾಯಯಾ ಸದಾಹಂ ಕೃಪಣ ಸುಭ್ರೂ ಭವತ್ಯಾ ಪ್ರೇಮಯಂತ್ರಿತಾ ಆತ್ಮಾನಂ ನಾಭಿಜಾನಾಮಿ ಮೋಹಿತಸ್ತವ ಮಾಯಯಾ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ತಥಾ ಬಕ್ರೆ ಕೀ ತರಹ ಅಹಂ ಮೇ ಕೃಪಣಃ ಕಂಜೂಸ್ ಜಿಸ್ಸೆ ಜೀವನ್ ಕೆ ಮಹತ್ವ ಕಾ ಕೋಯಿ ಜ್ಞಾನ ನಹಿ ಹೈ ಸುಬ್ರು ಹೇ ಸುಂದರ ಮೋಹೆ ವಾಲಿ ಭವತ್ಯಾಹ ತುಮಾರೆ ಸಾಥ್ ಪ್ರೇಮಯಂತ್ರಿತಃ ಮಾನೋ ಪ್ರೇಮ್ ಮೇ ಬಂಧಾ ಹುವಾ ಜೋ जो कि वास्तव में विषय वासना है, आत्मानम आत्मसाक्षात्कार, जो मैं हूं और जो मेरा धर्म है ना, अभिजानामी, अभी तक समझ नहीं पाया, मोहिता मोहित होकर तब तुम्हारे मायया आकर्षक भौतिक स्वरूप के द्वारा। अनुवाद और तात्पर्य इस ज्वाइंग ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। हे सुंदर गौ वाली प्रिय, मैं उसी बकरे के सदृश हूँ क्योंकि मैं इतना मंद बुद्धि हूँ ना, मैं तुम्हारे सौंदर्य से मोहित होकर आत्म साक्षात्कार के असली कार्य को भूल गया हूँ। तात्पर्य, यदि कोई अपनी पत्नी के सौंदर्य में फंसा रहता है तो उसका गृहस्थ जीवन अंधकूप के तुल्य है। हित्वात्मबाटम गृहमंधकूपम, ऐसे अंधकूप में रहना निश्चित रूप में आत्मघात है। यदि कोई दयनीय भौतिक जीवन में भौतिक से छुटकारा चाहता है तो उसे स्वेच्छा पूर्वक अपनी पत्नी के साथ अपने विषय भोगों को त्यागना होगा, अन्यथा आत्म साक्षात्कार का प्रश्न ही नहीं उठता। जब तक कोई आध्यात्मिक चेतना में बहुत आगे ना बड़ा चढ़ा हो, तब तक गृहस्थ जीवन अंधकूप के सिवा कुछ भी नहीं है, जिसमें उसे आत्मघात करना होता है। इसलिए महाराज प्रहलाद महाराज ने संस्तुति की है कि यथा समय कम से कम जब मनुष्य 50 वर्ष का हो जाए तो उसे घर बार छोड़कर चला जाना चाहिए। वनम गतो धर्माश्रयेत, वहां उसे हरि के चरण कमलों की शरण ग्रहण करनी चाहिए। सोम ज्ञान विरंदस्य ज्ञानांजन शलाकय शिक्षरितम येन तस्मै श्री गुरवे श्री चैतन्य मनोविष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकं। वंदेहं श्री गुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता शिवशातान्वितांश्च। हे कृष्णकरुणा सिन्धौ दीनबन्धौ जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। सप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी ब्राह्मी हरिप्रियं वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ஹரே கிருஷ்ணா. யயாதி மகாராஜ் அப்னா ஹி கஹானி கே ரஹே கேத்தே ஹுவே உன்னோனே எக் பக்ரே கா கஹானி பதாயா அப்னி பத்னி தேவயானி கோ. பிச்சலே ஸ்லோக் தக் பக்ரே கா கஹானி சமாப்த் ஹோ கயா. அபி தேவயானி பூச்சி ஹோகி வோ பக்ரா கௌன் ஹை. அச்சானக் சே வோ பக்ரே கா கஹானி க்யோ பதா ரஹே ஹோ. இஸ் ஸ்லோக் மே வோ கபூல் கர ரஹா வோ பக்ரா கோய் ஔர் நஹீ மே ஹூன். இசே கா கயா கேதே ஹை ததா அஹம். ததா அஹம் கா அர்த் கயா ஹை? ததா வோ ஜைசா பக்ரே கா கஹானி மே பதாயா வோ கோய் ஔர் நஹீ ஹை, ததா உசி பிரகார் மே பீ ஹூன். யானி வோ பக்ரா கோய் ஔர் நஹீ ஹை, மே ஹூன். அஹம் சப்த மகத்வபூர்ண ஹை. தோ யே பஹுத் சித்தாந்திக் பாத் ஹை. அபி தக் உன்னே எக் பக்ரே கா கஹானி பதாயா, கித்னா மூர்க் பன் கயா தா வோ பக்ரா, க்யா க்யா துக்கோ கோ அனுபவ கியா. அபி மே யே பக்ரா ஹூ அத்யந்த மே யே மான்னா யே யயாதி நாமக் ராஜா கோ சாதாரண சீஸ் நஹீ ஹை. மே மூர்க் ஹூ அப்னே ஆப் கோ கிருணாத்மக் ரூப் மே மான்னா யே ஷரணாகதி கா எக் பஹுத் மஹத்வபூர்ண விதி ஹை. ஜெய்ச கோய் பச்சதாதா ஹை, பச்சதா ஹோதா ஹை, பச்சதாவ் கி அந்த மே அப்னி நம்ரதா கோ வெக்த கர்தா ஹை. பச்சதாவ் கி அந்த மே அப்னி நம்ரதா கோ வெக்த கர்கே கேதா ஹை மே ஹீன் ஹூ, மே தீன் ஹூ. யே பக்தி கா பஹுத் மஹத்வபூர்ண அங்க ஹை. அபி மஹாராஜ் யயாதி கே ஜீவன் மே பலே உன்னே க்யா க்யா குச் தோ கியா அலக் பாத் ஹை, லேகின் இதர் ஜோ அப்னே ஆப் கோ எக் பக்ரா மான் ரஹா ஹை, யே சோச்னே லாயக் விஷய வஸ்து ஹை, மான்னே லாயக் விஷய வஸ்து ஹை. யே சாதாரண வ்யக்தி நஹீ, ராஜா ஹை, சாரா விஸ்வ கே ராஜா, அனேக தேவதா லோக் பி உன்கே பாத் சுன்தே தே. யே யாதி அபி வோ யே விஷய யா விஸ்வ கே ஜோ அஸ்லி தத்வ ஹை வோ சமஜ் கே. க்யா ஹை வோ? மே பலே போக கரனே கயா, மே போக நஹீ கியா, மே மூர்க் பனா. மே கயா தா போக கரனே கே லியே, கயா தா தன் சம்பத்தி கமானே கே லியே, யா மே கயா தா சுக் கோ அனுபவ கரனே கே லியே, லேகின் உல்டா மே மூர்க் பன் கயா, ஐ பிகேம் எ ஃபூல். யே பாகவத் கே பஹுத் மஹத்வபூர்ண விஷய வஸ்து ஹை. ஜெய்ச ஆப் சப் ஜானதே ஹை, பாகவத் மே 10 விஷய வஸ்து ஹை. அத்த சர்கோ விசர்கச்சா ஸ்தானம் போஷமதயா மன்வந்தரேஷானகதா நிரோதோ முக்திராஸ்தயா. பலே 10 விஷய வஸ்து ஹை, சாரே 10 விஷய வஸ்து பாகவத் மே அலக் அலக் ஜகா வர்ணன் கியா கயா ஹை, லேகின் முக்கியதா ஏக் ஏக் விஷய வஸ்து கா வர்ணன் ஏக் ஏக் அத்யாய மே கியா கயா, ஏக் ஏக் சந்த மே கியா கயா ஹை. குச் ஸ்கந்த மே 2-3 விஷய வஸ்து கா முக்கியதா உல்லேகன் ஹோதா ஹை. தீசரே அத்தியாய மே சர்க, சௌதே அத்தியாய மே விசர்க, அத்தியாய மே தீசரே ஸ்கந்த மே சர்க, சௌதே ஸ்கந்த மே விசர்க, பாஞ்ச்மே ஸ்கந்த மே அத்த சர்கோ விசர்கச்ச ஸ்தானம். யானி யே பௌதிக ஜகத் கா வர்ணன் ஹுவா ஹை, பௌதிக ஜகத் கே அலக் அலக் ஸ்தானோ கா வர்ணன் ஹுவா ஹை. ஸ்தானம் கா தூசரா சப்த ஹை ஸ்திதி. உஸ் ஸ்தானம் கோ வர்ணன் கரத்தே ஹுவே உசி பாகவதம் கே தூசரே ஸ்கந்த கே 10வே அத்யாய கே துசரே அத்யாய மே ஹுவா ஹை கி ஸ்திதிர் வைகுண்ட விஜயா போஷணம் ததனுக்ரஹாத். ஸ்திதிர் வைகுண்ட விஜயா, இகோ சல் ரஹா ஹை க்யா பைக் கா? ஸ்திதிர் வைகுண்ட விஜயா, ஸ்திதி ஜோ ஹை வோ வைகுண்ட கா விஜய், யானி பகவான் கி விஜய் கோ கோஷணா கரனே வாலி ஹை. பகவான் பத் ஜீவோ கே ஊபர் கேசே விஜய் பிராப்த கர்தே ஹை? மாயா கே துவாரா பத் ஜீவோ கே ஊபர் விஜய் பிராப்த கரே ஹை. வைசே அப்னே நிஜி சுந்தர்தா குணோ கே துவாரா வோ பக்தோ கே ஊபர் விஜய் பிராப்த கர்தே ஹை. இஸ்ஸே ப்ரஹ்ம சம்ஹிதா மே கஹா கயா ஹை, லீலாயிதேன புவனானி ஜயத்ய ஜஸ்த்ரம் ஜெயதி conquers the whole world. लेकिन भौतिकवादी के सामने अगर कोई व्यक्ति भगवान की लीलाओं को पेश करेगा तो भगवान की लीलाओं को आकर्षित नहीं करते। भगवान उसके ऊपर भौतिकवादी या जिसके मन पूर्ण तरीके से कामुक है, भौतिक विषय वासना में आसक्त है, उसके ऊपर भगवान का जीत उनके निजी आध्यात्मिक स्वरूप या दिव्य लीलाओं के द्वारा नहीं होता है। तो इससे सबसे पहला भगवान अपने दिव्य स्वरूप से या आकर्षण करने से पहले सबसे पहले कहते हैं अपनी माया का जो खेल है, जो माया का जो स्वरूप है, उससे क्या करते हैं, बद्ध को सता देते हैं, आकर्षित करते हैं। पहले आकर्षित करते हैं, उसको सताते हैं, उसको पूरा एकदम बिल्कुल खत्म कर देते हैं, तब वो नम्र होता है, तब वो सोचता है कि वो मैं गलत व्यक्ति के पास गया। अंततः माया कौन है? भगवान का ही स्वरूप है, भगवान का ही है माया। इसलिए भगवान गीता में भगवान कहते हैं कि मम माया दुरत्तया, मेरी माया जो है दुरत्तया, बहुत दुर्गम है, उसको पार करना। तो एक प्रकार देखा जाए बद्ध जीवों को भगवत धाम लेके जाने के पीछे भगवान का एक बहुत महत्वपूर्ण एक योजना है। योजना क्या है? माया। सबसे पहला माया आकर्षित करती है बद्ध जीवों को। आकर्षित करके जब वो माया के चंगुल में फंस जाता है तो उसको इतना दुख मिलता है, इतना दुख मिलता है, मूर्ख बना देती है, उसको सत्ता के रखती है। जब उस समय अगर वो बुद्धिमान है तो क्या करता है, इस प्रकार पछताता है, पछता के नम्र बनता है और ये समझ लेता है मैं भोगता नहीं हूं, मैं नियंता नहीं हूं। जब मैं भोगता नहीं हूं, मैं नियंता नहीं हूं, तो कौन है वो भोगता, कौन है वो नियंता? तब वो प्रश्न पूछता है, हु इज द एंजॉयर, हु इज द कंट्रोलर? तब वो भगवान के शरण में आता है। इसलिए ये भौतिक जगत, भले ही जगत कहा गया दुखाले मशाश्वतम, ये भगवान ने इसको बनाया तो इसके पीछे भगवान की योजना है। क्या योजना क्या है? बद्ध जीवों को कैसे मेरे पास लेके आए। जैसे कोई बच्चा है, उसको प्रेम से कहो नहीं सुनता है, तो क्या करना पड़ेगा उस बच्चे को? बहुत दो तीन नाफा मारना पड़ेगा तब वो सुनता है। वैसे अच्छे बच्चे हैं तो उनको एक बार बोलने से सुन सकते। इसलिए ये तीन शब्द है, शासन, शास्त्र, शस्त्र। शस्त्र, शास्त्र, शासन, ये शासन करने के लिए भगवान ने दो चीजों को दिया। एक क्या है वो? शास्त्र। इसलिए शस्त्र धातु से शास्त्र बना है। और दूसरा क्या है? शस्त्र। अगर कोई शास्त्र की बात नहीं सुनता है और समझता है और भगवत धाम में जाने के प्रयास नहीं करता, अच्छा बच्चा नहीं बनता है, तो भगवान के शासन में शास्त्र के शासन के द्वारा नहीं रहता है, तब भगवान ने एक शस्त्र दिया है। क्या वो शस्त्र? माया। तो माया की शासन में रहना होगा। तो माया की शासन में वो सोचता है कि मैं माया को भोगने वाला, माया के शासन में कैसे जाता है व्यक्ति? क्योंकि वो सोचता है कि शास्त्र का बात क्यों सुनो, मैं अपनी तरीके से जीवन बिताऊंगा। तो इसलिए वो माया की शरण नहीं बल्कि माया को शोषण करने जाता है। तो माया बोलती आओ आओ शोषण करो कम, लेकिन बाद में वो उल्टा माया के द्वारा शासित हो जाता है। माया के द्वारा शासित होकर जब वो दुखों को अनुभव करता है और पछताता है मैं मूर्ख बन गया, तब सोचता है कि अच्छा था मैं शास्त्र का बात सुना था। इसलिए भगवान ने दो प्रकार के जीव है, उन सबको उद्धार, बुद्धिमान सुनने से समझ जाता है, प्रभुपाद लिखते हैं उपदेशामृत में। तो फर्स्ट क्लास इंटेलिजेंट कौन है? जो सुन के समझ जाता है, तो ये पहली श्रेणी की बुद्धिमान है। जो दूसरी श्रेणी की जो बुद्धि है, सेकंड इंटेलिजेंस, क्या है? अनुभव करके अब ये आती है, लेकिन समझा बहुत जरूर, ये भी ऑर्डिनरी है, पास तो हो गया, समझ तो गया अनुभव करके। अभी तीसरा श्रेणी के वो कौन है? वो उनके बारे में बात ही नहीं करता। अरे भगवान भी परेशान है उनसे, उनके साथ क्या करना है उनको, व्हाट टू डू। भगवत गीता में कहते हैं ऐसे लोगों को, भगवान कहते हैं मैं उनको बार बार इस भौतिक जगत में भेजता हूं, आई सेंड देम अगेन अगेन टू दिस मटेरियल वर्ल्ड। तब एकदम उनसे इतना परेशान हो जाते, भगवान क्या करते, इस जगत को ट्राई कर देते हैं। ही डिस्ट्रॉयज दिस वर्ल्ड. वाई ये प्रलय क्यों होता है? क्योंकि ये तीसरे प्रकार के जो बुद्धि वाले हो उनकी वजह से होता है प्रलय. जैसे कोई पिताजी है बच्चे को भेजते स्कूल में, तो अच्छा बच्चा है तो एक बार स्कूल में गया पढ़ाई करके पास होके निकल गया. थोड़ा इतना अच्छा बच्चा नहीं है तो एक बार फेल हो जाता है. पिताजी बोलते दो तीन डांट के बोलते जाओ वापस पढ़ाई करो, तो एक दो बार फेल होके फिर वापस पढ़ाई करके पास हो जाता है. लेकिन तीसरे प्रकार का जो बच्चा है वो कभी पढ़ाई नहीं करता है, कितना भी डांट खाने पर भी कितना भी मार खाने पर भी पढ़ाई नहीं करता है. अभी वो पिताजी क्या करते हैं, दो बार तीन बार स्कूल वापस एडमिशन कराते हैं, वापस उसी साल में भेजते हैं, फीस भरते हैं, थोड़ा प्रेम से बात करते, कभी राफा भी मारते, सब कुछ करते, लेकिन 10 बार वही कक्षा में रहा, 10 साल तक फिफ्थ स्टैंडर्ड में है. अभी क्या करेंगे, स्कूल से निकाल देते हैं, यानी वो पढ़ाई है. यानी ये जो भौतिक जगत की सृष्टि के पीछे यही उद्देश्य है कि अधिकांश लोग तो बुद्धिमान नहीं है. अधिकांश लोग सोचते हैं कि मैं अनुभव करके सीखूं, है कि नहीं? जैसे कोई बच्चा है, माता पिता बोलते हैं, खास करके जब आपको याद होगा जब फैन घूमता है, जो टेबल फैन घूमता है, तो बच्चे को अच्छा लगता है क्या है घूम रहा है, तो उंगली डालने का प्रयास करता है. माता पिता बोलते हैं मत करो, अच्छे बच्चे सुन लेते हैं, लेकिन बच्चे सोचते हैं कि जाने दो बाद में देखता हूँ क्या क्या होता क्या है. उंगली डाल उंगली करता है, बाद में फैन को देख के डरता है. लेकिन तीसरे प्रकार का जो बच्चा है महामूर्ख, तो ये फैन में उंगली डाला तो कटा, लेकिन दूसरा फैन में नहीं कटेगा. अभी क्या है, ये स्त्री से प्रेम किया तो दुख मिला, लेकिन ये बहुत अच्छी है, शी इज वेरी गुड, क्योंकि भक्त है ना. जस्टिफिकेशन भी देता है, नहीं वो पहला जो था ना वो बहुत खराब था, ये बहुत अच्छा है. ये उस बच्चे के जैसा है, वो सोचता है कि वो फैन खराब था, ये फैन बहुत अच्छा है, इससे उंगली डालने से कुछ नहीं होगा मुझे. लेकिन वो मूर्ख बच्चा को मान में सब फैन फैन ही है. तो दिस इज रियलाइजेशन, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है. ययाति का ये जो प्रसंग है बहुत महत्वपूर्ण प्रसंग है. खासकर के भक्ति नाथ ठाकुर के भजन पढ़ना चाहिए सबको, शरणागति के भजन. हाँ, उसके अंदर भक्ति नाथ ठाकुर ये जो अवस्था ययाति अनुभव कर रहा है उसको स्पष्ट रूप में उल्लेखन करते हैं. अनेकों अनेकों भजन में है, जैसे अभी हम एक भजन गाते हैं, अभय शरणारविंद रे बजौरे मन श्रीनंदनंदन अभय शरणा. बाद में क्या बोलते, कृपण दुर्जन वाया शब्द इधर तथा हम कृपणा. अभी ये विफल सेविन कृपण दुर्जन कृपणा चपल आगे, तो ये कृपणा, ये शरणागति की मानसिकता को प्रस्तुत करने वाला है ये कृपणा शब्द. या ये पछताव के बाद नम्रता को व्यक्त किया, तथा हम मैं वो बकरा हूं और क्या था क्या स्थिति है मेरा, कृपणा. ये भगवद गीता में आता है, अर्जुन ने क्या क्या कहा प्रभु जी, दूसरे अध्याय के सातवें श्लोक में, कार्पण्य दोषोपद स्वभाव स्वच्छा विवाम धर्म समूढ़ोचेता. अर्जुन भी बड़े बुद्धिमान बना था, लेकिन अंत में बोला मैं भी बकरा बन गया. इतना बुद्धिमता वाला बात बोलने के बाद भी मैं बकरा हूं. अर्जुन के पांच आर्ग्यूमेंट है, पांच कारण बताते को मैं क्यों युद्ध नहीं करना चाहता हूं. सबसे पहला उन्होंने कहा अर्जुन ने भगवान को, मैं युद्ध इसलिए नहीं करना चाहता हूं क्योंकि मेरे अंदर बहुत अपार दया है, कंपैशन. तो बाद में अर्जुन ने कहा दूसरा, नहीं नहीं हे भगवान, आप बोल रहे हो भोगना है, मैं अपने साथियों के साथ अगर अगर मेरे परिवार वाले नहीं है मैं कैसे भोग सकता हूं. मान लो कि मैं युद्ध किया जीत गया, लेकिन मेरे परिवार वालों को साथ में नहीं रहेंगे, इससे कैसे भोग सकता हूं. तीसरा कारण अर्जुन ने कहा भगवान को, पाप लगेगा ना मारने से. भगवान को बता रहे हैं, भगवान बोल रहे अर्जुन को तुम युद्ध करो, अर्जुन बोल रहे नहीं पाप लगेगा. कल एक भक्त से बातचीत हो रहा था, बोला मैराथन करो. प्रभु जी क्या है कि बुक डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, उधर जाएंगे, वो करेंगे, हम माया में फंस जाएंगे. भजन 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 नहीं होगा, वो ऑलरेडी है माया में, वो मुझे बोल रहे हैं। अर्जुन ने कहा था, भगवान ने कहा युद्ध करो, हाँ भगवान पाप लगेगा ना, मैं कैसे कर सकता हूं, भगवान की बात नहीं माना ही पाप है, उल्टा भगवान को बोझ दे रहा है, आप भी युद्ध मत, मैं भी युद्ध नहीं करूंगा, दोनों को पाप नहीं लगेगा। तो तीसरा कारण अर्जुन ने बताया कि मैं पाप लगेगा। चौथा कारण क्या बताया, देखो अगर युद्ध होगा तो जितने पूरे से मर जाएंगे, धर्म को रक्षा करने वाला नहीं रहेगा, स्त्रियां जो है वो दूषित हो जाएंगी, वर्ण संकर हो जाएगा, पूरा समाज नष्ट हो जाएगा, जो इसके कारक है वो सब नरक में जाएंगे, तो इसलिए मैं युद्ध नहीं करूंगा क्योंकि मैं नरक नहीं जाना चाहता हूं। तो किसने, कौन कह रहा है इसको, अर्जुन किसको, किसको कह रहा है, हे भगवान आपका बात मैं मानूंगा तो मैं नरक जाऊंगा। चौथी बात, पांचवी बात उन्होंने क्या कहा, धर्म सम्मूढ़ चेता। जैसे उन्होंने चार आर्ग्यूमेंट दिए मैं युद्ध क्यों नहीं करूंगा, उसके बाद अर्जुन समझ गए अस्तित्व में मुझे युद्ध करना है नहीं करना है कुछ मालूम नहीं पड़ रहा है, इसलिए मैं आपका शरण ले रहा हूं। तो अर्जुन का जो आर्ग्यूमेंट है, दया कैसे भोग सकता हूं, अगर युद्ध करूंगा तो पाप लगेगा, एक दृष्टिकोण से देखा जाए कितना अच्छा है ना उनकी बातें, लेकिन जैसे आज मैंने कहा जिस दृष्टिकोण से देखा इस आर्ग्यूमेंट को, ऐसा लगता है कि अर्जुन को बैठ के उधर ही मारो। भगवान को कहता है पाप लगेगा आपका बात सुनने से, लेकिन वही भौतिकवादी पढ़ता है सोचता है कि अर्जुन अच्छा था कृष्ण खराब था, है कि नहीं, वही बातें हैं, लेकिन एक दृष्टिकोण से देखा जाए ऐसा लगता है कि अर्जुन कितना बुद्धिमान है। तो वैसे ही एक दृष्टिकोण से देखा जाए माया बहुत सुंदर है, लेकिन वही माया को दूसरे दृष्टिकोण से देखा जाए इससे खतरनाक कोई और चीज नहीं है। लेकिन आप जिस दृष्टिकोण से देखते हो वो महत्वपूर्ण है, वो महत्वपूर्ण है। तो ये माया जो है वो भी उसी प्रकार का है, बहुत दूर से बहुत सुंदर दिखता है, लेकिन नजदीक में जब स्वरूप दिखाई पड़ता है। अंग्रेजी में कहावत है, कहते हैं गुड फॉर फार बट फार फ्रॉम गुड, इसका अर्थ क्या है, गुड फ्रॉम फार का अर्थ है दूर से अच्छा है, लेकिन उसका तत्व क्या, असर क्या है, बट इट इज फार फ्रॉम गुड, लेकिन अच्छाई से बहुत दूर है, यानी बहुत खराब है। इसलिए जब तक माया से दूर रहोगे माया भी अच्छा और आप भी अच्छा, लेकिन जैसे नजदीक जाओगे तो उसका स्वरूप दिखाई पड़ता है। हाउ यू विजन, हाउ यू सी, दैट इज इंपॉर्टेंट। अर्जुन के जो आर्ग्यूमेंट थे, अर्जुन के जो प्रस्ताव थे, वो सब अत्यंत इतना मूर्खता वाला प्रस्ताव है, लेकिन ये अर्जुन की बुद्धिमता वाले जो प्रस्ताव है उसमें मूर्खता को पहचानना, इसको ज्ञान कहा गया है। जब शास्त्र ज्ञान शब्द आता है, ज्ञान शब्द का यह अर्थ है कि इस जगत की सुंदरता में दोष देखना, यह ज्ञान है। इसलिए भगवद्गीता में 13वें अध्याय के 8वें श्लोक से 12वें श्लोक तक, ये सब याद रख लीजिएगा आप, भगवान ज्ञान 19 ज्ञान के लक्षण कहते हैं, उनमें से एक ज्ञान का लक्षण है जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषाणु दर्शनम। इधर जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दर्शनम नहीं कहा उन्होंने, क्या कहा, अनुदर्शनम। अनुदर्शनम का अर्थ क्या है, अनुदर्शनम का अर्थ है कि 24 घंटा देखना। जब भगवान का दर्शन नहीं कर रहे हो तो क्या दर्शन करना चाहिए, माया की असलियत को दर्शन करना चाहिए, क्या उसके अंदर जन्म मृत्यु जरा व्याधि यानी दोष है। इस भौतिक जगत के दोषों को देखना ज्ञान माना गया है, इस भौतिक जगत की खूबियों को देखना अज्ञान कहा गया है। तभी ये भौतिक जगत का यानी माया का दोष को उन्होंने पहचान लिया, क्या दोष था, या थी समझ गए माया जो है मुझे मूर्ख बनाया। जैसे अर्जुन ने भगवान का शरण ग्रहण किया, भगवान ने क्या कहा, असोच्यान अन्वशोचस्तम प्रज्ञावादांश भाषसे गतासुनगतासुंश्च नानुशोचन्ति पंडिता। पंडित है अर्जुन, पंडित लोग इस प्रकार नहीं सोचते, भगवान थोड़ा सभ्य है, डायरेक्टली नहीं कहा हे अर्जुन तुम मूर्ख हो, ने क्या कहा, हंसते हंसते कहा मजाक में, ये बहुत डेंजरस होता है अगर सीधा सीधा कह दे किसी व्यक्ति को तुम मूर्ख हो तुम नालायक हो, तो ठीक है अच्छा बुद्धिमान बन रहे थे ना ऐसा कहना और कितना ठोस लगता है कि नहीं इसको व्यंग्य भाषा से संबोधित करना, ये और भगवान ने वो यूज किया, ही हैज यूज्ड इट, उन्हें परिहास के रूप में उन्होंने कहा अच्छा बुद्धिमान लोग तो ऐसे नहीं सोचते, वैसे ही ये आती सोच रहा था मैं भोक्ता बनने गया बकरा बन गया, गया भोग करने लेकिन मार खाया, अभी ये पछतावा है। जैसे अर्जुन ने पछताया, उन्होंने चार प्रश्न पूछ के पांचवें प्रश्न पूछने के बाद तुरंत अर्जुन ने पछताया, क्या पछताया, कार्पण्य दोषो बहुत स्वभाव, मेरा वो स्वभाव बन गया है, हे भगवान बोलेंगे तुम ऐसा क्या क्यों बात कर रहे हो, क्योंकि मेरा स्वभाव बन गया है, क्योंकि बकरा बन गया मैं भौतिक जगत में। तो इसलिए जब कोई प्रश्न पूछता है ये याति ने ऐसा क्यों किया, ये याति कबूल कर रहा है मैं ऐसा इतना क्यों किया, क्योंकि मेरा स्वभाव बन गया था, व्हाट टू डू, कार्पण्य दोष क्यों, ऐसा स्वभाव क्यों है, कार्पण्य कृपणता से, कृपणता का अर्थ क्या है, कृपणता का अर्थ सीधा प्रभुपाद जी उपनिषदों से कोट करते हैं, कोट करके विदित्वास्त्वान्वार्गी लोकात्रयति सा कृपण सा ब्राह्मण, ब्राह्मण और कृपण ये दोनों विपरीत शब्द है, ब्राह्मण का अर्थ है जो इस जगत में दोषों को देखता है और दोषों को निवारण करने का जो ज्ञान उसके पास उसको ब्राह्मण कहा गया है, विदित्वास्त्वान्नाल अविद्वास्त्वान्नाल, विदित का अर्थ है जो जानता है, क्या जानता है, भौतिक जगत के दोषों को जानता है और इस जगत से मुक्त होने का रास्ता क्या है वो जानता है, वो ब्राह्मण है, लेकिन इस भौतिक जगत के दोषों को नहीं जानता है और उस दोषों से या इससे मुक्त होने का रास्ता नहीं इसको नहीं मालूम है, उसको कृपणा कहा गया है, यानी वन हु डजंट नो द गोल ऑफ लाइफ, जिसको जीवन का लक्ष्य नहीं मालूम है वो कृपण है, जिसका जीवन का लक्ष्य नहीं मालूम है वो कोई ना कोई लक्ष्य है, वो क्या है उसका लक्ष्य, इस भौतिक जगत को कैसे भोगना, हाउ टू एंजॉय दिस वर्ल्ड, उसका लक्ष्य बन जाता है, तो उसको कृपण कहा गया है। अस्तित्व में उसको कृपण क्यों कहा गया, कृपण का अर्थ है कंजूस, कंजूस का अर्थ क्या है, जिसके पास पैसा है लेकिन फिर भी खर्चा नहीं करता है उसको कंजूस कहा गया है कि नहीं, हाँ किसी के पास 1,00,000 रुपए पड़ा हुआ है पॉकेट में लेकिन वो प्यास लग रहा है भूख लग रहा है लेकिन सोचता है कि चलो ना आज पानी पीता है कि निकाल देते हैं देख लेंगे कल, एकदम बचाने के प्रयास करता है, जितना मेहनत करके उस पैसे को कमाया है वो इतना पैसा जो है अपना शरीर के लिए भी खर्चा नहीं करता, आत्मा की क्या बोझ छोड़ो, उसको कृपण कहा है, कंजूस कहा गया है, यानी सामर्थ्य होने पर भी उस सामर्थ्य को सही जगह इस्तेमाल नहीं करना इसको कृपणता कहा गया है, दान देने का सामर्थ्य होने पर भी दान नहीं देना इसको कृपणता कहा, कंजूस कहा गया है। तो उसी प्रकार मनुष्य शरीर जिसको प्राप्त हुआ है हर मनुष्य के पास भगवान की धाम जाने की सामर्थ्यता है, इसे मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ है, यानी भगवान जाने की सामर्थ्यता होने पर भी उस सामर्थ्यता को हम इस्तेमाल नहीं करने की वजह से हम कृपण बन जाते हैं, दो केपेबल ऑफ गेटिंग आउट ऑफ दिस वर्ल्ड फिल वी आर नॉट यूजिंग, हमारी सामर्थ्यता को सही जगह पे इस्तेमाल नहीं करना और इस्तेमाल नहीं करना इसको कृपणता कहा गया है। इसलिए इधर कार्पण्य कृपणता याति ने कहा मेरे पास सामर्थ्यता मैं राजा हूं लेकिन फिर भी मैं कृपण बन गया, क्यों, क्योंकि आगे कहते हैं सुभ्रु ये संबोधित कर रहे किसको, तथा हम हे मेरे सुंदर ब्रुकुटो ब्रुकुटिया बोलते हैं ना इसको, ब्रुकुटियों वाली पत्नी, वो बकरा कोई और नहीं था मैं ही, पत्नी के सामने जाके ऐसा बोलना साधारण चीज नहीं है, अभी इतना हद तक तो बड़ा बड़ा बातें बोल रहा था मैं राजा हूं मैं ये हूं मैं वो, अभी मैं बकरा हूं करके मान रहा है तो ये भी साधारण बात नहीं है, टू कंसिडर वन सेल्फ बी अ फूल। इसलिए अर्जुन ने कहा कि कार्पण्य दोषोपदस्व पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मुडचेता। धर्म सम्मुडचेता का अर्थ क्या है, मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है मुझे मालूम नहीं है। इससे क्यों, मैं क्यों मूर्ख हूं? तो अर्जुन ने स्वीकार किया मैं मूर्ख हूं, क्योंकि अस्तित्व में श्री विश्वनाथ ठाकुर कहते हैं भगवान ने अर्जुन से पूछा कि हे अर्जुन तुम तो अभी बड़े बड़े बातें कर रहे थे, अचानक मुझसे क्यों पूछ रहे हो, तुम तो बुद्धिमान हो ना। तब अर्जुन ने कहा धर्म सम्मूढ़चेता, मैं मूर्ख हूं, भले ही मैंने बड़े बड़े बातें कहा लेकिन है मूर्ख हूं। तो ये याद यही स्वीकार करे, भले ही मैंने बहुत जगह भोग किया सब कुछ किया लेकिन हूं बकरा। तो बाद में अर्जुन से भगवान ने प्रश्न पूछते हैं, अच्छा मूर्ख हो तो मेरे पास क्यों आ रहे हो तुम, अगर आओगे तो मान लो कि मैं उपदेश भी दूंगा तुम तर्क करोगे, क्योंकि तुम अभी बड़े बड़े बातें कहा तर्क करने लगा। तो अर्जुन कहते मैं अभी तर्क करूंगा नहीं, क्योंकि मैं शिष्य हूं। शिष्य जो है गुरु से कभी तर्क नहीं करता है। मैं आपसे ऐसे ही पूछने के लिए नहीं आया हूं, पृच्छामि त्वाम मैं पूछ रहा हूं त्वाम धर्म सम्मुडचेता, क्योंकि मैं समझ गया हूं मैं मूर्ख इसलिए पूछ रहा हूं, ऐसे पूछने के लिए नहीं आया हूं। इसलिए जब कोई अपने आप को गुरु के सामने पेश करता है तो क्या करना चाहिए, मूर्ख के रूप में प्रस्तुत करना चाहिए। तो भौतिकवादियों के लिए जो कामुक होते हैं उनके लिए गुरु है माया, क्योंकि आध्यात्म गुरु का बात नहीं सुनोगे माया गुरु बनेगी उनको। तो अभी माया पूरा अनुभव दिया, नेगेटिव टीचर विलज्जमानस्य, माया अभी भौतिक जगत में लोगों को शिक्षा का ही काम करती है। माया जो है भगवान की प्रतिनिधि होने के नाते वो भी हमारा गुरु है। किसके लिए गुरु है, हमको अनुभव दे के शिक्षा देती है माया, ये भौतिक जगत में कोई सुख नहीं है करके। तो अर्जुन ने कहा कि मैं शिष्य से हमें आपका शिष्य हूं, इससे मैं आपके से तर्क नहीं करने वाला हूं, इससे आप बताइए। सब भगवान ने कहा ठीक है मैं बताऊंगा, मैं ज्ञान दूंगा। अब इधर याति भी इसी बात को कहते हैं, तथाहम कृपण सुभ्रु। ये सुभ्रु शब्द के विचार मैंने किया, ये सुंदर भ्रुकुटियों वाले करके क्यों संबोधित किया, स्त्रियों के जो भ्रुकुटी होती हैं उससे पांच प्रकार के बाण निकलता है, जो कामदेव के जो बाण है पांच प्रकार के निकलता है, तो इससे बहुत स्ट्रांग होता है। इससे कभी भी स्त्रियों का चरण को देखना चाहिए, कभी उनका आंखों को देखना नहीं चाहिए, क्योंकि भ्रुकुटियों से बाण निकलता है तो उससे पुरुष जो है बेहोश हो जाते हैं बाण से। पांच प्रकार के बाण है, उसको विस्तार से चर्चा नहीं कर सकते, वो कुछ है अलग अलग प्रकार के ब्राण हैं। तो कहाँ भ्रुकुटियों से निकलता है, वो भी सीधा नहीं निकलता, वो टेढ़ा निकलता है ऐसा वर्णन है। तो इससे मुक्त होने के लिए हमको क्या करना चाहिए, शास्त्र से वर्णन किया, जब भगवान के विग्रह का दर्शन करते हैं तो धीरे धीरे से चरण से भगवान के भ्रुकुटियों का दर्शन करते हैं। जब भगवान का भ्रुकुटियों का दर्शन करते हुए हरे कृष्ण नाम का जप करते हैं तब उनको हृदय काम है वो नाश हो जाता है। जो ब्राह्मण दीक्षित है जब वो काम गायत्री मंत्र को जप करते हैं तब वो स्मरण करते हैं, भगवान के भ्रुकुटियों से उत्पन्न हुआ जो बाण है उसको आवाहन करते हैं काम गायत्री मंत्र में, वो गायत्री सेमिनार में कभी और कहेंगे। तो नहीं, कमिंग बैक टू द पॉइंट, इसलिए मैंने कहा सुभ्रु आपका भ्रुकुटियां बहुत सुंदर है, लेकिन वो सुंदर है लेकिन मैं बकरा तो बन गया। इसलिए भवताः प्रेम यंत्रिताः, मैं क्यों बकरा बना, क्योंकि आपका प्रेम यंत्रिताः, आप यंत्र बन गए और मैं यंत्रिताः, जैसे कोई यंत्र है जैसे चाहे वैसे चलाता है, मैं भी जैसे आपने नचाया जैसे तुम, तो वैसे मैं नाचने लगा। क्यों नाचने लगा, क्योंकि ये आपसे जो प्रेम था ये प्रेम नहीं था, वो सिर्फ में काम है, आपसे काम वासना होने की वजह से मैं जैसे आपने बोला वैसे नाचना शुरू किया। भवता प्रेम यंत्रिता आत्मानम नाभिजानामि, इसलिए इतना सब कुछ करने के बाद आत्मानम मैं कौन हूं, मेरा जीवन का लक्ष्य क्या है, नाभिजानामि अभी तक मैं जान नहीं पाया। क्यों, मोहिता तव माया, क्योंकि आपके माया के प्रति मैं मोहित हो गया था, आई एम कंप्लीटली बिविल्डर्ड बाय योर माया। तो ये एक तरीके से देखा जाए ययाति जो है देवयानी को निंदा नहीं कर रहे, देवयानी से घृणा नहीं कर रहे, अपने आप से घृणा कर रहे हैं। क्योंकि जब कोई पुरुष माया में या फंस जाता है या भोग करता है, वो दोष स्त्री का नहीं है, दोष किसका है? पुरुष का है। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ पतन होने की वजह से या कोई आकर्षित होके स्त्री के प्रति आकर्षित होने की वजह से स्त्री को दोष देता है पुरुष, इसमें बिल्कुल स्त्री का कोई दोष नहीं है, दोष किसका है? पुरुष का दोष है। तो इस रूप में देखा जाए ये आती बिल्कुल एक अच्छा शरणागत भक्त के रूप में अपना हृदय को खोल के पछता रहा है, पछताए के अपनी नम्रता को व्यक्त कर रहा है, ये मानना चाहिए याति को। ये सब खास करके गृहस्थों के लिए, खास करके जो भोग लालसा व्यक्त है और धीरे धीरे से भक्ति में आ रहे हैं या आ चुके हैं, उनके लिए ये याति एक आदर्श है। किस प्रकार हमको भी घृणा करना चाहिए, मैंने क्या कर दिया है, आई डिड नॉनसेंस, ऐसा करने की वजह से क्या होगा, हमारी शरणागति और दृढ़ होता है। तो मोहिता स्वमाया, मैं मोहित हो गया, दोष आपका नहीं है, दोष किसका है? मेरा है, क्योंकि मैं मोहित हो गया। तो करके ये कहते हैं प्रभुपाद जी, लिखते हैं प्रहलाद महाराज का कि 50 साल के पहले व्यक्ति को छोड़ देना चाहिए। अस्तित्व में लाख खा के बाहर निकाले उससे पहले खुद निकल जाए अच्छा है, मान सम्मान रहेगा, नम्रता से निकल जाए तो अच्छा है। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि इफ वन वॉन्ट्स लीव फ्रॉम मेटल एग्जिस्टेंस मेटल लाइफ, वन मस्ट वॉलेंटरली गिव अप हिज लस्ट रिलेशनशिप। स्वेच्छा से अपनी जो जो भौतिक जीवन है उसको छोड़ना चाहिए, नहीं तो मृत्यु है वो छुड़ा देगी। इसलिए मृत्यु आने से पहले स्वेच्छा से छोड़ेंगे तो अच्छा मैटर। जैसे मान लीजिए आप किसी घर में हो और वो जो घर का मालिक है वो आपको चाहता नहीं है, सहन कर रहा है, करते करते एक दिन ऐसा आएगा तो आपको लात मार के भगा देगा, इससे अच्छा क्या करो, पहले से निकल जाओ, इज्जत से निकल जाओ, नहीं तो मृत्यु। तो इससे क्या पता लगता है, भौतिक भोग को अपने स्वेच्छा से छोड़ना या मृत्यु को प्राप्त करना, ये दो ही चॉइस है, ओनली टू चॉइस है, आइदर यू गिव अप और यू फोर्स टू गिव अप। प्रभुपाद दिखते हैं कि भगवान के सामने आके स्वेच्छा से झुको, नहीं तो भगवान मृत्यु के रूप में आके झुका देंगे, है कि नहीं? तो मृत्यु के रूप में भगवान को स्वीकार करना है या मृत्यु को भगवान के रूप में स्वीकार करना है? भगवान मृत्यु के रूप में आएंगे भौतिकवादियों को और उसको शरणागत करा देंगे। अगर स्वेच्छा से हम भगवान का शरण लेंगे, वही मृत्यु जो है वो भगवान के रूप में आएंगे। भगवान मृत्यु के रूप में हमको नहीं देखना है, मृत्यु को भगवान के रूप में देखना है। किस व्यक्ति को भगवान मृत्यु के रूप में आते हैं? भौतिकवादी। किस व्यक्ति को मृत्यु भगवान के रूप में आता है? एक भक्त को। तो यही अंतर है। इसलिए स्वेच्छा से भगवान का शरण लेना इज इंपॉर्टेंट। इसलिए माया जो है भागवत में वर्णन है, व्यज्यमान स्यात्, वो लज्जित हुई रहती है भगवान से और भगवान के पीछे की ओर रहती है माया। क्यों? क्योंकि माया जो है बद्ध जीव को दुख दे रही है, और ये दुख देने का आज्ञा किसने किया, किसने दिया? कृष्ण ने दिया। इसलिए एक तरीके से देखा जाए माया जो है कृष्ण की सेवा कर रही है, लेकिन ऐसी सेवा कर रही है जो ऐसी सेवा कर रही है जो बिल्कुल ठीक नहीं है, इसको ठीक नहीं है, बद्ध जीवों के लिए ठीक नहीं, भगवान के अंश है बद्ध जीव, लेकिन भगवान के आदेश के अनुसार माया ये सेवा कर रही है, इसलिए माया एक तरीके से भगवान के लिए बहुत प्रिय है और साथ साथ में भगवान के लिए प्रिय है और साथ साथ में अपने आप को लज्जित मानती है, क्यों इनको मैं बहुत दुख दे रही हूं और भगवान से दूर लेके जाने का प्रयास कर रही हूं, तो इससे माया है शब्द महत्वपूर्ण है। मोहित तव माया, इसकी माया से अस्तित्व में तव माया ये शब्द इस्तेमाल किया गया है, तो ऐसे भगवान की माया है, भगवान की माया का जो मूर्तिमान स्वरूप है पुरुष के लिए स्त्री और स्त्री के लिए पुरुष, जितने भी कार्य होता है जगत में वो सारे कार्य माया, इसको माया इसको माया, लेकिन मूलतः माया यही है, ये दो माया हो, दिस इज द थिंग। हरे कृष्ण, यानी कोई प्रश्न है? हाँ हाँ, इनका प्रश्न है कि आपने गृहस्थ जीवन का त्याग करने के बारे में कहा, इसलिए गृहस्थ जीवन का जो त्याग है वो गौण है, भोग की प्रवृत्ति को त्याग करना, इसलिए गृहस्थ जीवन को त्याग करने का अर्थ ये नहीं कि आप संन्यास लेना। गृहस्थ के बाद कौन सा आता है? वानप्रस्थ आता है, तो वानप्रस्थ में ही पति पत्नी साथ में रहते हैं, लेकिन कोई गृहस्थ के हिसाब से नहीं रहते, तीर्थ यात्रा करते हैं, साथ में भगवान की भजन करते हैं और तपस्या करते हैं, ये वानप्रस्थ है। इसलिए वानप्रस्थ तो कम से कम स्वीकार कर लेना ही चाहिए गृहस्थ को। वानप्रस्थ का अर्थ है कि 24 घंटा अपनी पत्नी के साथ भजन करना, ये वानप्रस्थ है। गृहस्थ का अर्थ क्या है? थोड़ा भोग थोड़ा भजन, लेकिन एक टाइम आना चाहिए जब पूरा वानप्रस्थ को स्वीकार करना। संन्यास वर्ष है, आप कहां जाएंगे भौतिक जगत में या इस कलयुग में? पत्नी को अकेले छोड़ के जाएंगे, बेटा तो अमेरिका में है, कहीं इधर है उधर है, तो कोई ना कोई देखभाल करने के लिए होना चाहिए। इसलिए अगर कोई वानप्रस्थ भी रहता है वो इट इज ऑलमोस्ट लाइक संन्यास होंगे ऑलमोस्ट, और वो भी पांच प्राप्त करे। वो आपने कहा दो प्रकार की स्त्रियां होती हैं, स्त्रियां भले ही अनेकों प्रकार के हों लेकिन पुरुष का जो आसक्ति है स्त्री के प्रति वो एक ही प्रकार का है, अटैचमेंट। वो भले ही वो कितना भी अच्छा स्त्री है लेकिन अटैचमेंट जो है वो पुरुष के लिए खराब है, इट इज वेरी वेरी बैड, क्योंकि उसको बहुत परेशान होना पड़ता है, बहुत दुख अनुभव करना पड़ता है। वो एक ही स्त्री की आसक्त हो हुआ रह सकता है, वो है उसकी माँ मदर। आसक्ति का अर्थ है उनके साथ लगाव हो सकता है, मातृत्व, लेकिन पत्नी के प्रति आसक्त होना कोई भी शास्त्र में उसको मान्यता नहीं दिया है। पत्नी को पति के प्रति आसक्त होना चाहिए, लेकिन पति को पत्नी के प्रति आसक्ति नहीं होना चाहिए, तभी वो पति बन सकता, नहीं तो नहीं बन सकता, नहीं तो वो पत्नी बन जाएगा और पत्नी पति बन जाएगी। कलयुग में क्या हो रहा है? तो उल्टा हो रहा है, क्यों? उसका मूल कारण यही है कि पति जो है पत्नी के प्रति आसक्त है। अगर वो आसक्त नहीं है तो अपने कर्तव्यों को अच्छी तरह से कर सकता है, कर्तव्य तभी अच्छा व्यक्ति कर सकता है जब वो आसक्त नहीं है। पुरुष अपने कर्तव्य को अच्छी तरह से तभी कर सकता है जब वो आसक्त नहीं है, और स्त्री अपनी कर्तव्यों को अच्छी तरह से तभी कर सकती है जब वो आसक्त है, ये प्रकृति का नियम है। डिटैच फ्रॉम वन वाइफ, वो भी ज्ञान का एक लक्षण है। पुत्र दार गृहादिशु ऐसा है ना, आठ से बारह श्लोक में अमानित्तम मडम्बित्तम शांतिरार्जम आठवें अध्याय का, तो वन शुड बी डिटैच। डिटैचमेंट का अर्थ है कि अगर वो नहीं भी है ना, मेरा जीवन सुखी है, भी तो चलेगा, नहीं भी तो भी चलेगा। ये डिटैचमेंट, ऐसा नहीं कि निकाल दो, ऐसा नहीं कि इसके बिना कैसे चलेगा, है भी चलेगा, नहीं हो तो भी चलेगा। से बार बार क्या करती है, अपना काम निकालने के लिए स्त्रियां क्या करती है, धमकी देती है, मैं चले जाऊंगी, जाओ सब लाइन में आ जाते हैं, तब आप करते भी अच्छा कर सकते हो। अगर अटैचमेंट है, हो तुम चली जाएगी तो क्या हो जाएगा, तो फिर उसका बात मानना पड़ेगा। वन शुड बी डिटैच, तभी वो अच्छा पति हो सकता है, नहीं तो वो पत्नी हो जाएगा और पत्नी पति हो जाएगी। तो चॉइस है, क्या करना है, आप पति है पत्नी है, आप जानो। हरे कृष्ण ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की श्री प्रभुपाद की जय। आपने वो बता दिया था सावित्री सत्यवान का, सावित्री सत्यवान से अटैच थी।